अब इसके कहने के मुताबिक जब देखा गया तो फलम्मा रआ कमीसहु, फिर जब उसने देखा उसकी कमीज को, कुद्दा मिन दुबुरे, तो वो तो पीछे से फटी हुई थी, वो तो पीछे से फटी हुई थी और ये मामला तो सॉल्व हो गया। काला इन्नहु मिन कैदिकुन, उसने कहा कि ये तुम्हारी चालों में से है, तुम औरतों की चालों में से ये चाल है। तुम औरतें जब अपने जाल में किसी को फंसाना चाहती हैं, चाल चलती हैं, तो ये चाल है तुम्हारी। इन्न कैदकुन आदीम, बेशक तुम्हारी कैद यानी कैद यानी तुम्हारी जो चालें होती हैं औरतों की, वो बहुत बड़ी होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है ना कि औरतों की चालों में आके या इनके फरेब में आके बड़े बड़े ओहदों वाले अपने ओहदों से हाथ धो बैठते हैं, बड़े बड़े शुरफा और बड़े नेक पारसा लोग फिसल जाते हैं, बहुत सारे घरों में तलाकें हो जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि कोई औरत ही है जो आके घर को खराब करती है। वो जैसे हम हमारे यहाँ कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो इसी वजह से कहते हैं ना कि एक औरत ने ही अप्रोच किया किसी के शोहर को तो वो फंसा। जब औरतों की चालों की बात आती तो वो मामूली नहीं होती, उनकी चाल अजीम है, बहुत बड़ी होती है। जब कुराने पाक में जहां पे शैतान की चाल के बारे में आया तो फरमाया इन कैद शैतान काना दाइफा, बेशक शैतान की जो चाल है ना वो कमजोर है, लेकिन जब औरतों की चालों का बात आई तो बताया कि बहुत मजबूत होती हैं। इनकी प्लॉट जब करती हैं तो बहुत ऐसी प्लॉटिंग करती हैं कि किसी को फंसा दें। और आप दुनिया जहान में आप देख लें तो इस तरह के मामलात आपको आम नजर आएंगे। इंसान शैतान की चाल से बच जाता है, लेकिन औरत की जब चाल आती है ना तो वो आदमी बिल्कुल ही बेजोर होकर गिर पड़ता है, सरेंडर कर देता है उसके सामने, क्योंकि आदमी के लिए औरत की चाल बहुत बड़ी चीज होती है ना, उसके लिए बहुत उसको कमजोर कर देती है। कोई औरत लिफ्ट कराए थोड़ा सा भी आदमी को, आंखों से या कोई टेक्स्ट से या कोई और चीज से, तो आदमी फिसल जाता है। तो उसने कहा तेरी तुम लोगों की चालें बहुत अजीम है यूसुफ, यूसुफ तुम आ रहे अनहाजा, तुम दरकुसर करो, इग्नोर करो इसको, जो हो गया है जाने दो इसको, बस छोड़ो, बस किसी से इसकी बात ना करना, यानी बस अब छोड़ दो इस बात को। और औरत को कहा बस तगफीरी लीदम भी, तुम अपने गुनाह की बख्शिश मांगो। हालांकि ये तो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, लेकिन इतना पता था इसका मतलब है। देखिए एक कुछ चीजें होती हैं अल्लाह ताला ने फितरत में डाली हुई, ये फितरत में है इंसान के कि ये गुनाह है, चाहे वो अल्लाह को नहीं मानते या मानते हैं लेकिन शिर्क करते हैं साथ या जो भी, लेकिन फितरत में है कि ये बुराई है, इसी के साथ ऐसी करना ये बुरा फेल है। तो इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा इसके ऊपर तौबा कर तू। अब उसने बस इतना सही कहा, उसने कहा वे इन्नकी कुमती मीनल खौतीन, बेशक तो तू खताकारों में से है, बस दैट्स इट, इतना ही कहना काफी था। अब सोचते हैं कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे दी कि या उसको कत्ल कर देता या ऐसे करता। और तो बास जगह पे आता है कि नहीं उसके अंदर गैरत की कमी थी, वो बेगैरत था। बास जगह आता है कि अगर वो ऐसा करता कुछ तो रेपुटेशन का मामला था ना, सब जगह ये कितनी रुसवाई होती। अब तो इसको बात को उसने यहीं पे ठप देने की कोशिश की कि बस यहीं पे इसको बंद कर दो, चुप कर जाओ, तुमने भी नहीं कोई बात करनी, जस्ट इग्नोर दिस, जो हुआ सो हुआ, जाओ घर को अपने, और तुम औरत तुम अपने गुनाह की माफी मांग। क्योंकि कुछ भी वो करता, कहीं भी कोई एक्शन लेता ना तो एक स्कैंडल बन जाना था। और आपको पता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी यही मुश्किल होती है। लेकिन उसको अंदाजा नहीं था ये बात कि उसकी बीवी के दिल में कौन सी आग लगी हुई है, इसने तो बाज नहीं आना। यहां पे हमें ये बातें पता चली हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पाक दामनी थी वो सबके सामने आ गई और बात को वहीं पे खत्म करने का कहा गया। अगर आप देखें जो ऐसी बातें होती हैं ना, वो जब हो जाए ना तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल आती है। कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है, कहीं ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हो सकता है कि इनके घर के दूसरे जो नौकर हों उन वो तो देख ही रहे थे कि बहुत अरसे से यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो चीजें कोई ढकी छुपी नहीं थी। मैंने आपको बताया ये बार बार सिड्यूस करने के लिए आता है रावदत्त हूँ, तो ये तो चीजें हो रही थी ना घर में। तो हो सकता है कि उन्होंने उनको ये बात तो ना पता हो लेकिन बाकी बातें तो पता थी, तो उन्होंने अपनी मालकन की हरकतों को बाहर जाके बताया। दूसरे नौकरों को नौकर बताते हैं, फिर वो आगे अपने घरों में बता देती हैं, इस तरह चीजें फैल जाती हैं। मगर जो भी हुआ हुआ ये कि ये बात फैल गई, सारे शहर में फैल गई। अब क्या हुआ, वकाल निस्वतुन, और कहा औरतों ने फिर मदीना थी शहर की। अब शहर में तो गॉसिप्स हो रही हैं, लोगों को शौक भी बहुत होता है गॉसिप्स करने का, और फिर कोई बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में कोई बात हो तो फिर तो हर घर में चर्चे होते हैं। के इमरातुल अजीज, अजीज की जो बीवी है, तुराविदु फताहा अन नफसी, वो फुसलाती है और किसको, अपने गुलाम को उसके नफ्स से। वो तो उसके पीछे पड़ गई, वो तो उसको सिड्यूस करती है। अब ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई और ऐसी बातें ना जंगल की आग की तरह फैलती हैं। वो पता है जो स्कैंडल्स होते हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं, और औरतों को खास तौर पे बहुत शौक होता है गॉसिप्स करने का, वो फारिग बहुत शायद ज्यादा होता है। और हालांकि अल्लाह ताला ने, आगे आप पढ़ेंगे सूरह नूर में, अल्लाह ताला ने इस किस्म की चीजों को कंडेम किया है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तुहमत लगी थी तो ऐसे लोग जो गॉसिप्स कर रहे थे उनको भी डांट पिलाई गई कि तुम क्यों नहीं ऐसे चुप रहे, क्यों तुमने चर्चा किया बुराई का। यही हमारा दीन सिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के इस्लाम का हुसन ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे, फॉर गॉड सेक, जो चीजें आपसे ताल्लुक नहीं रखती उनको कुरेदना, उनको पूछना इसका क्या, उसका क्या, इसका क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, जो आपसे मुतल्लिक नहीं है, क्यों हम उन बातों को करते हैं और बस उन्हीं को डिस्कस किए रखते हैं, किसी ना किसी को टॉपिक बना के उसी के ऊपर बस बात करे जाते हैं। लायानी बातें, हमारा इस्लाम ब्यूटीफुल तब होगा, खूबसूरत तब होगा जब हम ये बातें छोड़ देंगे, या हमें नहीं, जब हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम क्यों करें। तो यहां पे भी अब ऐसी चीजें होने लगी, बातें कद शगफहा हुब्बा, उन्होंने कहा वो तो इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई है, बेकाबू हो गई, पागल हो गई उसके पीछे, अब ये बातें हो रही हैं, क्रेजी हो गई है। इन्ना लना रोहा फी दुलालिन मुबीन, बेशक हम तो उसको खुली गुमराही में देखते हैं, वो तो बिल्कुल ही रास्ते से ही हट गई है। अब इब्ने कय्यम ने इस एक आयत से इतनी बातें निकाली हैं कि किस के कौन सी बातें शो कर रही हैं कि ये औरतें उसको जलील करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि बात सच्ची है, वो था ऐसा ही, मगर फिर भी ये इजाजत नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसे बात की जाए और उसको टॉपिक बना के और उसको डिस्कस किया जाए और गॉसिप्स की जाए और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ, तुम्हें पता है फलां के साथ ये, उसके साथ वो चक्कर में है, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसका उसके साथ है, ये जरूरत नहीं है। बल्कि अगर आंखों से भी देखा हो तो तब भी ना बात करें, अकेले में किसी को नसीहत की जाए ये है उसकी खैर ख्वाही, ना कि इसको खैर ख्वाही समझा जाए। तो जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने इब्ने कय्यिम ने फरमाया कि देखिए सबसे पहली बात यह कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका नाम ले, उसको कहा इमरातुल अजीज, यानी उसके शौहर के ओहदे से उसको उसकी बात की, जैसे कहते हैं मिसेस प्रेसिडेंट ऐसे करती हैं, जो फर्स्ट लेडी है उसने ऐसे किया है, उसका नाम नहीं लेते। इससे उसकी तहकीर है कि देखो इतने बड़े ओहदे वाले की बीवी ये कर रही है, देखो वजीर की बीवी का ये हाल है। और फिर तुरावीदु फताह, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी आदमी के चक्कर में है, उन्होंने कहा अपने ही गुलाम के चक्कर में है, उसके ऊपर ही फरेख्ता हुई भी है। यानी आप कोई ओहदे मनसब वाला होता तब भी बुरी बात थी, लेकिन ये तो एक नौकर के ऊपर रिझी हुई है, कितनी बेइज्जती की बात है, अपने नौकर को नहीं इसने छोड़ा, कितना मतलब कितनी उसके लिए डिमीनिंग बात है, तहकीर की बात है ना। फिर ये कि हाल का सीगा इस्तेमाल किया कि यानी अभी भी इसी काम में लगी हुई, ऐसे नहीं कि पुरानी बात हो गई, अभी भी उसके चक्करों में, तो ये भी और बुरी बात हो गई कि अभी तक उसको फांस रही है। और फिर ये भी कि ये भी पता चल गया कि अभी तक गुलाम उसके जाल में फंसा ही नहीं, तो कोशिशों में लगी हुई है, इसमें भी कितनी उसकी बेइज्जती है, इतने बड़े आदमी की बीवी होके एक गुलाम को ऑफर कर रही है, उसको उसके ऊपर फरेख्ता हो रही है, उसी के ऊपर बेकाबू हो रही है। कद शगफा हुब्बा, इससे पता चल गया वो तो दीवानी हुई पड़ी है, उसके लिए पागल हो रही है, वो है कि उसको लिफ्ट ही नहीं कराता। अब देखिए ना, ये उसके लिए इंतहाई तहकीर की बात है कि गुलाम होके उसने उसको ठुकरा दिया, और ये उसकी आशिक बनी हुई है, बिल्कुल ही पागल है। फलम्मा समिया, जब उसने सुना, अब जाहिर बातें घूम के तो पहुंच ही जाती है ना, कोई किसी की बात कर रहा हो वो समझता है कि नहीं बात पहुंचनी नहीं है, लेकिन बात पहुंच ही जाती है, कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, उसको भी पहुंच गई। उसने जब सुना भी मकरी हिन्ना, उनके मकर को, क्या मकर उन्होंने किया, अभी तो उन्होंने कोई चाल ही नहीं चली। उनका मकर ये था कि देखिए खुद सोचें, जब ऐसी कोई बात हो रही हो, इतनी बड़ी औरत है, उसका गुलाम है, उसके पीछे पागल हुई भी दीवानी, तो फौरन क्या जहन में बात आती है कि देखे तो सही वो है कौन, कौन है जिसने इसको इतना पागल बनाया। अभी कोई छोटी औरत थोड़ी थी, इतनी बड़ी आदमी की बीवी थी, तो इसको भी ये बात पहुंच गई। तो उसने कहा असलत इलैहिन्ना, उसने बुला भेजा उनको, अरसला ना होता ना बुलाना, इनवाइट कर लिया उनको दावत पे। वा आतदत लहुन्ना मुत्तकन, और उनके लिए तकिए वाली मजलिस बिछाई, तैयार की गई, यानी पूरी प्लानिंग की गई कि किस तरह से एक एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें फिर क्या होगा ये आगे पता चलेगा ना, क्योंकि वो इनको लाजवाब कर देना चाहती थी कि मेरे ऊपर बातें बनाती हो ना, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। ये वो उसने एक सारी ऐसी प्लानिंग की। तो अब जब वो आतत कुल्लु वाहिदत मिनहुन्न सिक्कीना, और दी हर एक औरत को इनमें से एक छुरी। अच्छा, अब ये हुआ कि जब खाना पीना खत्म हो गया और एक रिलैक्सेशन का टाइम हुआ, तो डिजर्ट में वहां पे मीठे में फल दिया करते थे, तो उसने फल मंगवाए, फल दिए उनको और छुरियां भी दी। और फिर जब वो छुरियां उनके हाथों में थी और वो फल काटने को तैयार थी, फल काटने लगी, वकालते खरुज अलैहिन्ना, तो उसने कहा कि निकल आओ इनके सामने, उन यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी। फलम्मा रअयनाकहु, जब तो जब रअयना उन्होंने देखा, हु उसको अकबर ना हो, उन्होंने समझा उसको बड़ा, यानी इतनी इंप्रेस हो गई, वो तो दंग रह गई, उनके होश गुम हो गए, इतने होश गुम हुए कि वक़्त ताना अइदियाहुन्ना, कि उन्होंने काट लिए अपने हाथ, कोई उनको यही नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, इतनी मभूत हो गई, इतनी मैस्मराइज्ड हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन से। आखिर देखिए ना, आप खुद अंदाजा करें, दुनिया का कोई भी हसीन से हसीन इंसान आपने देखा हो औरतों में, आदमियों में, उसका हुसन कुछ नहीं है, उसका हुसन कुछ नहीं है, वो उस हाफ का भी एक पोर्शन है जो उसको मिला है, और कहां पूरी दुनिया का जो अल्लाह ताला ने हुसन पैदा किया उसका आधा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया तो उनका हुस्न क्या होगा। तो उन्होंने अपने हाथ काट लिए, उनको पता ही नहीं चला। तो ये इस बात की निशानी है ना कि वो कितने खूबसूरत थे। और ये कोई छोटी छोटी लड़कियां तो थी नहीं, बड़ी बड़ी बेगमात थी। लड़कियां हो तो फिर भी कोई बात समझ आती है, ये तो औरतें थी। और क्या कहने लगी, वकुलना, और कहने लगी हाशा लिल्ला मा हाजा बशरा, हाशा लिल्ला, पाकी है अल्लाह की। यानी एक तो ये इसमें ये कि अल्लाह ताला कितना बाकमाल है कि उसने ऐसी चीज पैदा की, ऐसा इंसान पैदा किया। दूसरा इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, खुदा की पनाह, अल्लाह की पनाह। यानी इसको तो देख के हमें लगता है कि कोई इंसान ही नहीं है। खुदा की पनाह, ये कैसा इंसान है? यानी कलमा ताज्जुब है ना। तो इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कुछ नहीं है मगर एक फरिश्ता है, मुअज्जज फरिश्ता है। तो इंसान ही नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता लग रहा है। इसलिए देखें, चाहे वो मुसलमान तो नहीं थी, अल्लाह को जानती होंगी, इसीलिए उन्होंने कहा हाशा लिल्ला, लेकिन शिर्क करने वाली कौम थी ये। मगर ये बात पता चलती है कि उनको क्या फरिश्तों का पता था कि वो कह रही है कि फरिश्ता है। इसलिए कि देखिए, जितने भी मजाहिब हैं, फरिश्तों का कॉन्सेप्ट अक्सर मजाहिब में है, और फरिश्तों के बारे में इंसान के दिमाग में, किसी ने देखा थोड़ी हुआ है फरिश्ते को, लेकिन दिमागों में सबके ये कि फरिश्ते को बहुत खूबसूरत मखलूक है। और बाकी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा उनकी असल शक्ल में, और जब इंसानी शक्ल में भी आते तो दहिया कलबी की शक्ल में आते थे, जो बहुत ही खूबसूरत सहाबी थे। तो वो भी अपना मुंह छुपा लिया करते थे जब किसी औरत से बात करते थे कि कोई फितने में ना पड़ जाए। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी तफसीरों में आता है कि तो अपना मुंह छुपा लेते थे कि कोई औरत फितने में ना पड़ जाए, इतने खूबसूरत थे। तो उनको होश ही नहीं रहा उन औरतों को, और उन्होंने अपने हाथ काट लिए और उनका खून टपकने लगा। तो उस वक्त उसने उनको वापस भेजा और कहने लगी फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है जिसमें तुम मुझे इल्जाम देती थी, मुझे मलामत करती थी कि देखो अपने गुलाम के पीछे लगी हुई और उसकी दीवानी और उसकी आशिक हो गई है, ये देखो अब बताओ मुझे। यानी उनको रियलाइज कराना चाहती थी ना कि मेरा क्या कसूर, मैं तो बेकसूर हो गई, क्योंकि जब ये है ही इतना खूबसूरत तो मेरा क्या कसूर है, और तुम अपना हाल देखो, तुम्हारा अब क्या हाल हुआ, जबकि तुम तो थोड़ी देर के लिए देख रही हो और मैं तो इसके साथ रहती हूँ, दिन और रात इसको देखती हूँ। और फिर उसने कहा वलकद रावतु अन्नफसी, मैं मानती हूं कि मैंने इसको फुसलाना चाहा है उसके नफ्स से, फस्ता सम, लेकिन ये हर दफा बच जाता है। मैंने देखे, अब आप इसमें भी कि उसको हया नहीं थी कि वो खुले आम लोगों के सामने एक बात करे। और देखिए, गुनाह की सिवेरिटी बढ़ जाती जिस वक्त के उसको खुले आम बयान किया जाता। तो मैंने तो उसको टेम्प्ट किया लेकिन ये बच गया, इसने इनकार किया। और इससे जाहिर है, इससे पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर से तो खूबसूरत थे, उनका अंदर भी कितना खूबसूरत था कि एक शराफत, नेकी, पाकीजगी ये थी उनके अंदर। वरना हर दफा बच जाना आसान नहीं। और फिर वो कहने लगी वल इन लम यफअल, और अलबत्ता अगर, यानी इसमें भी ताकीद है, जोर है और पक्की बात है कि अलबत्ता अगर ना करे मा आमुरुहु, जो मैं हुक्म देती हूं इसको, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी, ला युसजनन्ना, अलबत्ता मैं इसको जरूर कैद करा दूंगी, वला यकूनम मिन सागिरीन, और अलबत्ता ये हो जाएगा जलील होने वालों से, मैं इसको जलील करके रख दूंगी, मैं इसको जेल करा दूंगी। जो तरीके होते हैं एलीट किस्म के लोगों के, कि जब उनकी कोई नहीं चलती, उनकी बात नहीं मानी जाती, तो वो ऐसे ओछे हथकंडों पे आ जाते हैं और वो ऐसी बातें करने लगते हैं, धमकियों पे आ जाते हैं, मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब जाहिर है इतनी एलीट औरत थी और वो भी सारी औरतें थी, और बास जगह पे आता है कि उन औरतों ने भी कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, यूसुफ की अपनी मालकन की बात मान जाओ। ये तो तुम्हारी मोहसिन है, तुम क्यों इसकी मुखालफत करते हो? तो एक और मुसीबत में फंस गए। तो वो कहने लगी कि ये तो मेरा कहना अगर इसने ना माना ना, तो मैं तो देखना फिर क्या करती हूँ इसके साथ। अरे अभी भी उसने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि उस सोसाइटी का क्या हाल था। अब तो वो पब्लिकली अनाउंस कर रही है, अब तो उसको शर्म भी खत्म हो गई है। अब तो उसके अंदर ये भी नहीं है कि मैं कुछ सोचूं कि ये औरतें सुन के और क्या बातें करेंगी। उसने बस उनके सामने सच्चे होना था, उनके सामने हो गए। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम अब क्या करते हैं। फिर अल्लाह की तरफ रुजू, काला रब्बी सिजनु। अब उसने जो कह दिया कि मैं कैद कराऊंगी, मैं जेल करा दूंगी, मैं फरमाया ए रब, ए मेरे रब, कैद खाना अहब्बु इलैया, ये ज्यादा प्यारा है मुझे, मिम्मा यदउननी इलै, इससे जो ये मुझे अपनी तरफ जिसकी जिस चीज की तरफ ये मुझे बुलाती है। ये भी नहीं कहा जिना या इश्क या गलत काम, वो नहीं फरमाया। फरमाया जिस चीज की तरफ ये मुझे बुलाती है, मैं उससे ज्यादा ये पसंद करता हूं कि मुझे कैद खाने में कैद हो जाऊं। अल्लाह अकबर, इतनी ज्यादा बुराई की कराहत, इतनी ज्यादा बुराई से नफरत, ये सबूत है यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का। ये पहले तो एक औरत थी, अब ये सारी औरतें पीछे पड़ गई। तो अब आप देखें कि वैसे कोई आम इंसान हो या बाज औरतें भी बड़ी खुश होती हैं कि उनके दीवाने बहुत, उनके चाहने वाले बहुत, उनके फैंस बहुत, उनके हुसन के ऊपर मतलब आशिक होने वाले बहुत। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश नहीं है। पता चलता है कि वो खुश नहीं, इसलिए कि जो इंसान अल्लाह से डरता है ना, तो उसको वो चीजें परेशान कर देती हैं जो अल्लाह की नाफरमानी में डाल देने वाली, जहां उसकी नेकी को खतरा है, जहां उसके ईमान को खतरा है। आज तो लोग खुद को खुद फितने में डालते हैं। जैसे मैं आपसे कहा कि फितने की जगह जहां पे फितना हो, या ऐसी साइट्स खुद खोल लेते हैं, या ऐसे दोस्त बना लेते हैं, या ऐसी मजलिसों में जाकर खुद ही बैठ जाते हैं, या ऐसी इनविटेशन को कबूल कर लेते हैं, या ऐसी बातों को सुनते हैं, या ऐसे सीन्स को देखते हैं, या ऐसे किसी के साथ कमरे में अकेले हो जाते हैं, या ऐसे ताल्लुकात बना लेते हैं, या ऐसी प्राइवेट चैटिंग शुरू कर देते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये फितना है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये कदम बढ़ तो रहे हैं, मगर ये आगे जाके कहां तक ले जा सकते हैं? याद रखिए, इंसान के अपने अंदर अल्लाह ताला ने एक अलार्म सिस्टम फिक्स किया हुआ है। वो अलार्म बोलने लगता है जब कोई गड़बड़ होती है। इसके बावजूद अगर इंसान उस रास्ते पे चलता रहे, तो आगे फिर तबाही है ना। या यूसुफ को देखें कि इतनी दीवान की, सारी औरतों की भी दीवान की देख ली, अब तो वो उनको इतना प्राउड हो जाना चाहिए था, बहुत एरोगेंट, मैं तो इतना हसीन हूं। हुसन भी इंसान के लिए इस तरह से भी फितना बनता है कि इंसान अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझने लगता है कि मेरे से ज्यादा तो हसीन ही कोई नहीं, और देखो सारे मेरे पीछे कितने दीवाने हो रहे। तो इसके ऊपर वो खुश होते, लेकिन वो खुश नहीं, वो परेशान हो गए। लोगों की, इन औरतों की दीवानगी ने उनको ऐसा नहीं किया अगर फखर से फूले समाते, वो फूले भी नहीं, उन्होंने तकब्बुर भी नहीं किया, उल्टा कह रहे हैं कि यार अब कैद मुझे प्यारी है इस चीज से। और पाकीज़गी जुबान की कितनी है कि वो लफ्ज तक नहीं बोल रहे। और फिर कहते हैं वह इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, और अगर नहीं तू फेरेगा मुझसे इन औरतों की चाल को, असबू इलैहिन्न, मैं मायल हो जाऊंगा अल्लाह इनकी तरफ। अगर अल्लाह तूने नहीं मुझे बचाया ना, यानी अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं तो इतना पाक और साफ, और मैं तो पहले भी बचा था, मुझे कौन फुसला सकता है, मुझे कौन फंसा सकता है, मुझे कौन अपनी तरफ मायल कर सकता है। नहीं अल्लाह, मैं कमजोर हूं। और यही इंसान की आजजी होती है कि वो अल्लाह ताला के आगे झुक जाए, बिछ जाए कि अल्लाह मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, गुनाह से बचने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं अल्लाह, जब तक तू ना बचाए। तो ऐ अल्लाह, अगर तू नहीं मुझे बचाएगा, तो मैं इनकी औरतों की चाल की तरफ मायल हो जाऊंगा। उनके लिए मायल होना भी, इंक्लिनेशन भी उनको कबूल नहीं है कि कि मैं जरा सा भी इनकी तरफ मायल हूं, कुछ करना आगे बढ़ के वो तो दूर की बात है। वहकुम मिनल जाहिलीन, और अल्लाह मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। फिर जाहिल कौन होता है? जो बगैर सोचे समझे कोई काम करता है, इग्नोरेंट, गुनाह करता है और वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं। अल्लाह ये ना हो मुझसे गुनाह हो जाए, तब देखिए अगेन वो अल्लाह ताला से पना, अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। तो वो औरतें ये कह रही हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं। और देखें एक इंसान जो इतना पाक साफ है, और सोचें ये माशरा कितना बेहयाई का, उसमें रहते हुए खुद को पाक साफ रखना कितना मुश्किल काम है। जैसे आज भी हम बेहयाइयों के माशरों में रहते हैं, हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ आप जिधर देख लें, साइन बोर्ड से लेकर उसमें भी ऐसी औरतों की तस्वीरें, ऐसे एड्स, आप टीवी उठा लें, आप कंप्यूटर ले लें, आप फोन पकड़ लें, हर तरफ बेहयाई ने मुंह खोला। ऐसे वक्त के अंदर इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत करें, नौजवान लड़के लड़कियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, किसी के जाल में ना फंसे, खुद को बचाने की कोशिश करें, ऐसे फितनों की जगहों से दूर रहें जहां से कहीं कहीं भी कोई जरा सा भी शायबा भी हो ना कि यहां पे कोई मसला हो सकता है, उन जगहों से दूर रहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम से हम पाक दामनी भी सीखते हैं, मर्द हो के कितने पाक दामन, और औरतों को तो इससे भी ज्यादा अपनी पाक दामनी की फिक्र रखनी चाहिए। और आप देखें ये आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ वो औरतें हैं जो हाई सोसाइटी की हैं, लीड क्लास की हैं, इन पर बड़ा स्टेटस है इनका, इनकी जाहिर है बड़े पावरफुल लोगों की बीवियां हैं, मामूली बात नहीं है। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है, उस सोसाइटी में उनका कोई ऐसा मकाम मर्तबा नहीं है, तो वो तो बड़ी आसानी से एडवांटेज ले सकते थे। आप देखें आजकल भी लोग जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके साथ क्यों कॉन्टेक्ट बनाते, भाई इनके से कल को कोई काम ले ले, फिर उसके बाद फखर भी बड़ा करते हैं कि हमारे जो फलां कॉन्टेक्ट हैं, मैं तो फलां को भी जानता हूं, मेरी तो फलां के साथ दोस्ती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कोई ऐसा कर सकते थे कि चलो बेगमात हैं ये, अगर ऐसा ही बातें कर रही हैं और मेरे से इतनी मुतासिर हैं तो मैं इनके साथ कॉन्टेक्ट रखूं, इनको नाराज ना करूं। ओके, और वो तो उनका तो मसला भी ऐसा था कि वो एक यानी ऐसी जगह पे, एक ऐसी जगह पे एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो अब वो कोई ओहदा लेना चाहते, आजादी लेना चाहते, कोई काम अपना निकलवाना चाहते, तो बहुत आसानी से करा सकते थे इनका कहना मान के। इसके बराक्स वो क्या कह रहे हैं, इसे पता चलता है ना कि गुनाह से बचना, वो गुनाह की जगहों से खुद को बचाना, ये कितना बड़ा एक जिहाद है, और कितनी एक अंबिया की को अपनी इस्मत का ख्याल होता था, अपनी इज्जत का ख्याल होता। और बाज दफा लोग इसी दुनिया के अंदर ऐसे भी हो जाते हैं कि वो अपनी बीवियों को सीढ़ी बनाते हैं अपने बॉस का दिल जीतने के लिए, प्रोमोशंस लेने के लिए। और यहां पे बड़ी बड़ी मालदार औरतें हैं तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई ऐसा हरबा नहीं इस्तेमाल कर, और कोई ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह मेरी तो मजबूरी हो गई है। तो जब भी इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, अल्लाह से रुजू करें, फस्तजाब लहू रब्बुहू, और अल्लाह ताला सुनता है जब बंदा पुकारता है, अपने दिल से पुकारता है, अल्लाह ताला जवाब देता है, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई उनकी दुआ, फसरफ अनहु कैदहुन, अल्लाह ताला ने फेर दी इन औरतों की चाल उनसे, इन्नहु वस्समीउल अलीम, भूल जाते हैं अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी, वो जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की और दुआएं कर रहे हैं, अगर उनका कोई बस वैसे तो चल नहीं रहा, क्या कर सकते थे वो, लेकिन दुआ तो कर सकते थे, वो दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादी मा रअउल आयात, फिर जाहिर हो गया उनके लिए इसके बाद जो उन्होंने देखी निशानियां। फिर जाहिर हो गया उनके लिए यानी इन निशानियों, सारी निशानियों को देख लेने के बावजूद भी उनके ऊपर यही जाहिर हुआ कि ला यसजुनन्नहू हत्ता हीन, कि वो कैद में डलवा दें इसको एक वक्त तक। उनको यही लगा कि अब तो देखे ना, पूरे शहर की औरतों में बात फैल गई, पूरे शहर की औरतें दीवानी हो गई। अब और औरतों के क्या हाल हो रहे होंगे जो कि अपने हाथ ही काट बैठी। अब उन्होंने एक दफा यूसुफ अलैहि सलाम को देख लिया था, अब क्या आगे उनकी होती है। तो अब खैरियत इसी के अंदर थी, जब ये सारी निशानियां भी जाहिर हो गई, सारा मसला सामने आ गया, तो अब ये मसलहत इसी में थी, क्योंकि बात फैल गई थी ना ये इस औरत ने भी सबके सामने कह दिया, और यूसुफ अलैहि सलाम ने अल्लाह तआला से दुआ भी की थी। तो अब इसी के अंदर खैरियत थी कि इनको कुछ देर के लिए जेल में डाला जाए, जबकि इनका कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी कसूर नहीं था। तो आप देख लें, बाज लोग सिर्फ इसलिए कि वो अपने असूलों के ऊपर कायम रहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं करना इस नौकरी में, कोई रिश्वत नहीं लेनी है, कोई और ऐसी सिफारिशें नहीं सुननी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता, कसूर भी नहीं होता, वो तो हक पे होते हैं। बल्कि यही बात आप यहां से भी देख रहे हैं ना कि यूसुफ अलैहि सलाम तो बल्कि मासूम है, और उनको उल्टा जेल में भेज दिया गया। और बाज दफा इंसान को हक के ऊपर रहते हुए भी मसाइब बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो हक पे होता है, ये नहीं कि वो गलत है इसलिए वो मसले में पड़, वो हक पे होता है, फिर भी उसको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हमें इन आयात से बेहतरीन सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, और इनको अपनी जिंदगियों में अमल में लाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.